ओम शांति। भट्टी के इस अंतिम सत्र में और वास्तविक रूप से भट्टी का अनुभव कराने के लिए हमारे बीच पधारे हैं परम आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी। हम सब जोरदार करतल ध्वनि से आत्म भाई का स्वागत करेंगे। आपको बाबा के इस ज्ञान और योग का परिचय 1972 में मिला। 1973 में आपने अपना एमएससी कंप्लीट किया गोल्ड मेडल के साथ और 1976 से आपने अपना जीवन बाबा के इस बेहद यज्ञ में ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया हुआ है। ईश्वरीय सेवा और स्वउन्नति हेतु आपने पूरे विश्व के पांचों ही महाद्वीपों के 90 से भी ज्यादा देशों में भ्रमण करके बाबा की सेवा भी की है और ब्राह्मणों में उन्नति का एक नई ऊर्जा, उन्नति की एक नई ऊर्जा दी है। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के युवा प्रभाग के हेडक्वार्टर मुख्यालय के संयोजक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी हमें जो बाबा के घर का एक दूसरा एक आकर्षण होता है टॉली, वो टॉली डिपार्टमेंट को भी आप संभाल रहे हैं। नम्रचित, योगी, ज्ञानी, ऐसा व्यक्तित्व वो आपका परिचय है। तो आत्म भाई का हम पुनः पुनः हमारे इस संगठन में स्वागत करते हैं और निश्चय बुद्धि और तीव्र पुरुषार्थ इस विषय को स्पष्ट करने के बाद आज हम सबको वो क्लास के बाद एक घंटा योग कराने वाले हैं। तो कितना ऊंचा भाग्य है सोचो। तो चलो सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन का भाग बनाते हैं सुनी हुई बातों का। परम आदरणीय आत्म भाई जी,
ओम शांति। निश्चय बुद्धि और तीव्र पुरुषार्थी, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। निश्चय बुद्धि बनकर आगे बढ़ते रहना। जब हम निश्चय बुद्धि बनकर कार्य करते हैं तो उसमें हमें विजय जरूर मिलती है। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो प्यारे बाबा हमें जो पालना दे रहे हैं उसके द्वारा हम निश्चय बुद्धि बनते जाते हैं और माया हमें संशय बुद्धि बनाने की पूरी कोशिश करती है। इसलिए कहते हैं डाउट माना आउट। माया हमेशा हमारे मन में डाउट लाने का काम करती है। डाउट माना आउट, फेथ है तो साथ है। हमें अपने पर पूरा फेथ होता है तो बाबा का हमें पूरा साथ मिलता है। जैसे जो बड़े बड़े तूफान आते हैं, वो जो पुराने वृक्ष होते हैं, मजबूत वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों को फाउंडेशन सहित उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ऐसे माया के तूफान भी अच्छे अच्छे बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन उखाड़ने की पूरी कोशिश करती हैं। उसमें फाउंडेशन उखाड़ते कम आत्माओं का, लेकिन फाउंडेशन हिलाते जरूर हैं। जब फाउंडेशन नीचे का हिलता है तो फाउंडेशन कच्चा होता है, कमजोर बनता है। इसलिए निश्चय बुद्धि बच्चे त्रिनेत्री बनकर कार्य करते रहते हैं। तीसरे नेत्र से तीनों कालों को स्पष्ट देखते हैं और कार्य करते जाते हैं। इसलिए कभी भी माया दुश्मन से वो धोखा नहीं खाते हैं। तो हमें पूरा निश्चय बुद्धि बनकर रहना है। निश्चय भी चार बातों में हमारा हो, 1% भी निश्चय कम ना हो। पहली बात, स्वयं पर पूरा निश्चय हो, स्वयं की क्षमताओं पर, विशेषताओं पर, गुणों पर, कलाओं पर कभी भी संशय नहीं लाना है। मैं ये कार्य कर सकूंगा या नहीं, ऐसा संशय कभी भी मन में नहीं लाना है। मेरा विजय जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा समझकर हर कार्य करते रहें। दूसरी बात, बाबा पर पूरा निश्चय होना जरूरी है। बाबा जो भी नई दुनिया की स्थापना का महान कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में पूरा निश्चय हो और उस कार्य में हम पूरा मददगार भी बने। लेकिन देखा गया है कभी कभी बाबा पर हमें संशय भी आने लगता है। किसी कार्य में हमें बाबा की मदद नहीं मिलती है तो हम कहते हैं बाबा तो मुझे मदद नहीं कर रहे हैं। बाबा मदद जरूर करते हैं, लेकिन उसमें हमारे जो पुराने विकर्म हैं वो कभी न कभी किसी न किसी प्रकार की बाधा डालते हैं। इसलिए कभी भी हमें बाबा पर सरिंचक मात्र भी संशय नहीं लाना है। तीसरी बात, ड्रामा पर पूरा निश्चय होना जरूरी है। ये ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है, इसका हर दर्श कल्याणकारी है। कभी कोई अनहोनी बात भी होती है तो हमें ड्रामा पर डाउट नहीं लाना है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं वो नथिंग न्यू का पाठ पक्का करके ड्रामा का आनंद लेते हैं। चौथा निश्चय है, हमारा ब्राह्मण परिवार में भी पूरा निश्चय होना जरूरी है। ब्राह्मण परिवार में एक दो की विशेषताओं को जानकर, उनकी कलाओं को जानकर हमें सहयोगी बनना है और सहयोग उनका लेना है और खुद भी आगे बढ़ना है और औरों को भी आगे बढ़ाते रहना है। इसलिए इन चारों बातों पर हमारा पूरा निश्चय हो। अभी निश्चय बुद्धि बनने की क्या निशानियां होती हैं? जो निश्चय बुद्धि होते हैं उनको सदा ईश्वरीय नशे की अनुभूति रहती है, और जितना निश्चय उतना नशा, ये गणित है। अगर कभी हमें नशा नहीं रहता है तो समझ लो मेरा किसी न किसी बात पर संशय जरूर है। जब पूरा निश्चय बुद्धि होता है वो हमेशा ईश्वरीय नशे में झूमता रहता है, तो निश्चय से नशा और नशे से निशाने की ओर वो आगे ही आगे बढ़ता जाता है। दूसरी निशानी, ऐसा निश्चय बुद्धि हमेशा विजय के नशे में रहता है। विजय मेरी निश्चित है इसलिए वो निश्चिंत रहता है, कभी भी भविष्य के बारे में चिंता नहीं करता है। तो निश्चय से निश्चित और निश्चित से निश्चिंत वो सदा रहता है और विजय का नशा उसके चेहरे पर सदा छाया रहता है। कोई भी उसके विजय के नशे को कम या गुम नहीं करा सकता है। चौथी निशानी, निश्चय बुद्धि आत्मा बेफिक्र बादशाह की तरह सदा अनुभव करती है। किसी भी प्रकार की फिक्र उसके पास फटक नहीं सकती है, इसलिए वो हमेशा बेफिक्र रहता है। और पांचवी निशानी है, निश्चय बुद्धि आत्मा बिंदु बनकर हर बात में बिंदु लगाकर आगे ही आगे बढ़ता है, कभी क्वेश्चन मार्क उसके मन में नहीं होता है। छठवीं निशानी है, ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा हमेशा समान में रहती है, मैं समर्थ बाप की संतान समर्थ आत्मा हूँ। इस समान में सदा रहने से व्यर्थ को समाप्त करता रहता है और समर्थ स्थिति की अनुभूति करता रहता है। कभी कभी हमारा जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन इच्छे है उस फाउंडेशन पर हम 21 जन्मों की प्रारब्ध रूपी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम इधर उधर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो माया उस फाउंडेशन में संशय का बॉम्ब रख देती है और वो जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। इसलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना है कि दुश्मन मेरे मन में कभी भी संशय न लाएं, क्योंकि संशयन्ति विनश्यन्ति, जो संशय बुद्धि होते हैं उनका विनाश होता है। क्योंकि बाबा पर पूरा निश्चय भी होना जरूरी है, बाबा मधुबन में ही आते हैं, बाबा कहीं और नहीं आते हैं, बाबा के ज्ञान पर बाबा के श्रीमत पर पूरा निश्चय जब हमारा होता है तो सदा हम विजयपन के निश्चय में सदा रहते हैं। अभी तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने, कल्याणकारी बाबा हमें सारे क्लब के लिए खजाने जमा करने का गोल्डन चांस दे रहे हैं, तो ये खजाने प्राप्त करने के लिए जो हम प्रसाद कर रहे हैं उसमें सदा तीव्रता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा ने बार बार इशारा दिया है समय समाप्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी भी हम गीत सुन रहे थे, कुछ पल ही बाकी तेरे पास हैं, तो खजाने पाने के लिए प्रसाद में तीव्रता होना बहुत जरूरी है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो हम प्रसाद कर रहे हैं वो अच्छी तरह से करना है। ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट पर हमारा पूरा ध्यान हो और उसमें अच्छी तरह से हमारा पुरुषार्थ हो। अगर पुरुषार्थ में दृढ़ता के साथ तीव्रता नहीं होगी तो हम समय पर अपनी संपूर्णता की मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे और अंत में हमें पश्चाताप ही करना होगा। इसलिए सदा पुरुषार्थ में तीव्रता मेंटेन करने के लिए पुरुषार्थी के साथ बाबा ने इसी हॉल में कहा है, 25,000 की सभा में बाबा ने कहा है, पुरुषार्थी के साथ तीव्र शब्द ऐड कर दो, तीव्र पुरुषार्थी मैं आत्मा हूँ, ये हमेशा अनुभव करो। तो पुरुषार्थ में सदा तीव्रता रखने के लिए कुछ एक बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें से कुछ बातें अगर आपके मन में रहेंगी तो कभी भी पुरुषार्थ में शिथिलता नहीं आएगी। पहली बात, अभी अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। कई पुरुषार्थी समझते हैं हम अंत में जब समय आएगा तब पुरुषार्थ करेंगे, तो बाबा कहते हैं अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। इसलिए उड़ती कला में उड़ने का समय चल रहा है, इसलिए तीव्रता में दृढ़ता हमें लानी है। अगर समय हमारे हाथ से चला गया तो हमें केवल हाथ मलते ही रहना होगा। कहावत प्रसिद्ध है, जब चिड़िया चुक गई खेत तो पछताने से क्या फायदा, क्योंकि भाग्य बनाने का ये समय है। अगर ये समय हमारे हाथ से चला जाता है तो हमें केवल पश्चाताप ही करना होगा, और कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा पश्चाताप की अग्नि में जलता रहे, कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहता है। इसलिए हमें समय पर पूरा ध्यान देना है, एक एक पल को सफल करके आगे बढ़ते जाना है। दूसरी बात, सदा पुरुषार्थ में तीव्रता बरकरार रखने के लिए एक बात याद रखें, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। हम सभी का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, कोई भी राम सीता नहीं बनना चाहता है क्योंकि वो 14 कला है और राम लक्ष्मी नारायण 16 कला वाले हैं, संपूर्ण हैं। तो इतना ऊंचा हमारा लक्ष्य है तो क्या मेरे लक्षण भी ऐसे ऊंचे हैं, ये हमें चेक करना है। अगर ऐसे ऊंचे लक्षण हमें लाना है तो प्रसाद में तीव्रता होना बहुत जरूरी है। अगर जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण नहीं होंगे तो हम 9 लाख की प्रजा में आएंगे। इसलिए पद भी हमारा साधारण होगा। इसलिए ये लक्ष्य और लक्षण, ये दो बातों को कभी भी नहीं भूलना है। ऐसे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे ऊंचे लक्षण मुझे जीवन में लाने हैं और उसके लिए पुरुषार्थ में तीव्रता होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, पुरुषार्थ में सदा तीव्रता मेंटेन करने के लिए एक बात याद रखें, मेरा शिक्षक स्वयं भगवान है। कोई साधु संत महान आत्मा पुण्यात्मा धर्मात्मा नहीं है। और कहावत प्रसिद्ध है, स्टूडेंट शोज टीचर। इतना ऊंची हस्ती हमें पढ़ाई पढ़ा रही है तो उस पढ़ाई का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? ऊंची स्थिति हमारी बनाना। तो ऐसी ऊंची स्थिति के द्वारा ही हम अपने टीचर का नाम बाला कर सकते हैं। हम देखते हैं किसी कॉलेज में से या यूनिवर्सिटी में से जो स्टूडेंट्स बहुत नंबर आगे लेते हैं उस कॉलेज का भी और टीचर्स का भी नाम बाला होता है। तो मेरा टीचर स्वयं भगवान है, उनका नाम बाला करने के लिए मुझे बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनानी होगी। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए पुरुषार्थ में तीव्रता होना बहुत जरूरी है। चौथी बात, सदा पुरुषार्थ ही तीव्र बनने के लिए याद रखना है, सारे कल्प में भाग्य बनाने की वेला केवल संगम युग ही है और भाग्य बनाने का गोल्डन चांस एक ही बार मिलता है, दोबारा कभी भी नहीं मिलता है। इसलिए इस छोटे से संगम युग में हमें 200 नाखून का जोर लगाकर भाग्य लूटना है, भाग्य विधाता से और लूटाना है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। होशियार विद्यार्थी उनको कहते हैं जो मौके पर चौका लगाते हैं और मौके का पूरा लाभ लेते हैं। इसलिए ये भाग्य बनाने की वेला है, अल्लाह की वेला है। अल्लाह हमारा भाग्य चमकाने के लिए आए हैं, भाग्य का सितारा उन्होंने जगा दिया है, लेकिन उसको कितना चमकाना है वो हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। इसलिए हमें 200 नाखून का जोर लगाना है, अर्थात जितनी क्षमता हमारे में है, जितना दम खम हमारे में है, पूरा उसमें लगा देना। मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है। कौन सी मार पड़ती है? मौका था लेकिन जितना मैंने लाभ लेना चाहिए उतना नहीं लिया। तो हमें मार्जिन नहीं छोड़नी है, पूरा प्रयास करना है। 200 नाखून की यादगार क्यों है? 10 नाखून हाथ के और 10 नाखून पैर के, अर्थात जितनी हमारे में क्षमता है, पोटेंशियल है, प्रतिभा है, सबको अपने पुरुषार्थ में लगाना। पांचवी बात है, सदा तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए हमें याद रखना है, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मेरे पीछे बहुत लंबी क्यों लगी है, अनेक आत्माएं मेरे पीछे कतार में खड़े हैं। अगर मैं ठंडा पुरुषार्थी बनकर चलूंगा तो अनेक आत्माओं के पुरुषार्थ में शिथिलता आएगी। तो मुझ पर इतनी आत्माओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, स्वयं आगे बढ़ना और इतनी आत्माओं को आगे बढ़ाना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ आत्मा पर है। अगर मैं पुरुषार्थ में ठंडा रहूंगा तो अनेक आत्माओं को भाग्य से वंचित रखूंगा। इसलिए ये धारणा बुद्धि में हम रखते हैं तो पुरुषार्थ में कभी भी शीतलता नहीं आ सकती है। पूर्वज आत्माएं हमेशा अपने जो भी वंश होता है उसके बारे में सोचते हैं, फिकर करते हैं। इसलिए हमें पुरुषार्थ में हमेशा तीव्रता लाना जरूरी है। छठवीं बात, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए नवीनता और तीव्रता ये दोनों एक दो के पूरक हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। तीव्रता अगर हमें लानी है तो उसके लिए नवीनता पुरुषार्थ में लाना जरूरी है। और नवीनता लाने का एक तरीका है मनन चिंतन करते रहना। मनन चिंतन करने से नई नई प्रेरणाएं, नए नए ज्ञान रतन हमें ज्ञान सागर बाप से प्राप्त होते हैं। और जब नई नई आइडियाज मिलती है, नई नई प्रेरणाएं मिलती हैं, तो पुरुषार्थ में तीव्रता बनी रहती है। उदाहरण लीजिए, अगर आप किसी के घर में मेहमान हफ्ता 10 दिन के लिए जाते हैं और वो हमेशा केवल आपको आलू की ही सब्जी खिलाता है तो वो आपको बोर हो जाएगा। लेकिन आलू ही हो लेकिन उसके अलग अलग नए नए एटम बनाकर खिलाते हैं तो बड़े चाव से, बड़े रुचि से आप खाते रहेंगे, क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा न्यूनेस चाहता है। जब न्यूनेस उसको प्राप्त नहीं होता है तो पुरुषार्थ में ऑटोमेटिक शिथिलता आती रहती है। हमारी दादियों के जीवन में वो कला थी, 80-85 वर्षों से वो पुरुषार्थ करते रहे लेकिन कभी भी उनको ब्राह्मण जीवन बोर नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास अपने उमंग और उत्साह को मेंटेन करने के लिए मनन चिंतन करने की हॉबी थी। और इसके कारण वो मौजों का जीवन अनुभव करते रहे। इसलिए हमने देखा है बाबा के पास आने के बाद जिन आत्माओं की मनन चिंतन करने की हॉबी होती है, आदत होती है, वो हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। और जिन्हों की मनन चिंतन करने की आदत नहीं होती है वो ठंडे पुरुषार्थ बनकर कभी कभी बाबा से दूर भी चले जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ में तीव्रता मेंटेन करने के लिए हर रोज हमें मुरली जो हम सुनते हैं, मुरली के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस पर मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। कई बार कुछ एक के मन में ऐसा आता है, अगर मैं सेवा करूं, ज्ञान रतन बांटती रहूं, मेरे पास जितना खजाना जमा है मैं अगर बांटती ही रहूंगी तो मैं तो खाली हो जाऊंगी, ऐसा कोई कोई सोचते हैं। लेकिन बाबा ऊपर से देखते हैं, ये मेरा बच्चा, मैं जो अमूल्य ज्ञान रतन देता हूँ मुरली के द्वारा, ये बहुतों को दान करता रहता है, सेवा करता रहता है, इसलिए ज्ञान के सागर बाबा ऐसी आत्मा को और भी ज्ञान देते ही रहते हैं, नए नए टचिंग, नए नए ज्ञान रतन देते रहते हैं। और वो आत्मा हमेशा स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करती है, ज्ञान का बल अपने पास अनुभव करती रहती है। सातवीं बात, पुरुषार्थ में तीव्रता मेंटेन करने के लिए एक सीन सदा याद रखना है। हम सभी आत्माओं रूपी घोड़े रूहानी रेस में दौड़ रहे हैं और ये रेस केवल राजस्थान की या भारत की रेस नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड रेस है। इस रेस में 10-15 लाख आत्माओं रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं। भगवान की मेहरबानी मुझ पर हुई तो मुझे भी इस रेस में उन्होंने सम्मिलित किया है, तो इस रेस में केवल मुझे रनर नहीं बनना है, केवल दौड़ते ही नहीं रहना है, लेकिन हमें विनर बनना है, प्राइज विनर हमें बनना है इस रेस में, तब तो दौड़ने का मजा है। आम जो है वो तो दौड़ते रहते हैं, मैं आम नहीं हूँ, मैं खास हूँ, मुझे प्राइस लेना ही है। और रेस के घोड़े की निशानी क्या होती है, वो बहुत एक्टिव और अलर्ट रहता है। जितनी एक्टिवनेस और अलर्टनेस और शार्पनेस होती है, मालिक हजारों घोड़ों में उस रेस का घोड़ा सिलेक्ट करता है, मुंह मांगे उसको दाम देता है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि ये घोड़ा मुझे रेस जिताकर देगा। तो रेस में जो बहुत आगे दौड़ते हैं उनको देखकर हमें बहुत खुशी होती है, और जो रेस में पीछे दौड़ते हैं उनको देखकर बहुत दया आती है, तरस आता है, हम सोचते हैं बेचारा थका हारा पीछे दौड़ रहा है। तो ये जो हमारी स्पिरिचुअल रेस है, बाबा के पास बहुत बड़ी टीवी है, उस टीवी में बाबा इस रेस का सीन देखते रहते हैं। अगर इस रूहानी रेस में मैं आत्मा रूपी घोड़ा आगे दौड़ता रहूंगा तो बाबा मुझे देखकर खुश होंगे, और पीछे दौड़ता रहूंगा तो बाबा सोचेंगे बेचारा मेरा बच्चा थका हारा पीछे दौड़ रहा है। हम बेचारे नहीं हैं, हम तीन बाप के बच्चे हैं, हमें इतनी पालना मिल रही है, इसलिए इस रेस में हमेशा आगे ही आगे दौड़ना है। इसलिए पुरुषार्थ में तीव्रता लाना बहुत जरूरी है। आठवीं बात है, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए कभी भी हमें साइड सीन देखने में रुचि ना हो। जब हम रोड पर तेजी से गाड़ी दौड़ाते हैं और कोई अच्छा ये आता है सीन वाला पोस्टर आता है उसको देखते हैं तो गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं। अगर स्पीड स्लो नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जितना साइड सीन पर हमारा ध्यान जाता है उतना स्वयं पर ध्यान कम होता है, और ध्यान स्वयं पर कम होता है तो पुरुषार्थ में ढीलापन आता है। तो साइड सीन देखना अर्थात दुनिया के समाचार की लेन देन में रुचि रखना, परदोष दर्शन करना, पर चिंतन करना, तो हमें अपने पर पूरा ध्यान रखना है। हम सभी हीरो पाटदारी हैं। इस सभा में जितने भी बैठे हैं सभी हीरो पाटधारी आत्माएं हैं इस सभा में बैठे हुए। भाई ताली भी नहीं बज रही है क्या? बाबा ने कहा है ये इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन होती है वो आप हीरो पाटधारी आत्माओं के लिए होती है। उसका लाभ आपको मिलता है, बाद में दूसरों को मिलता है। हीरो एक्टर हमेशा अपने पर फुल अटेंशन रखता है, किसी को भी वो नहीं देखता है, सभी उसको देखते हैं। तो अभी हम स्वयं को हीरो पाटधारी समझकर चलते हैं तो कभी भी पुरुषार्थ में ढीलापन नहीं आएगा। नवी बात है, पुरुषार्थ में तीव्रता मेंटेन करने के लिए बाबा ने कहा है दो शब्दों का अनहद नाद आपके कानों में सदा बजता रहे, अचानक और एवर रेडी। इन दो शब्दों का गीत आपके कानों में सदा बजते आ रहे। अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी को पता नहीं मेरा अंतिम श्वास कब होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा। आज हम देखते हैं अच्छे अच्छे चल पड़ते हैं, इसलिए जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं वो कल और काल पर कभी भी भरोसा नहीं रखते हैं, वो वर्तमान का आनंद लेते हैं। इसलिए कहते हैं भूत है सपना, भविष्य है कल्पना और वर्तमान है अपना। हमारे हाथ में ये वर्तमान है, तो जो मेरे हाथ में है उसका मुझे पूरा लाभ लेना है। दुनिया में कहते हैं भूत माना कैंसल चेक, भविष्य माना प्रॉमिसरी चेक और वर्तमान माना कैश इन हैंड। जब कैश इन हैंड होती है तो हम उस कैश को, उस धन को जैसा चाहे प्रयोग में ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में ये वर्तमान समय है, इसलिए इसका पूरा लाभ हमें लेना है। बाबा ने एक बार कहा था जो मोटी बुद्धि वाली आत्माएं होती हैं, वो ऐसे हीरे तुल्य समय को साधारण रीति से बिताते हैं और जो महीन बुद्धि वाली आत्माएं होती हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाली आत्माएं होती हैं, वो एक एक सेकंड का अपना पूरा फायदा लेता है। संगम युग का सेकंड हमें क्या कहता है, भगवान के साथ सेकंड करते चलो। बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में देते चलो। तो समय सफल करना अर्थात अच्छा फल प्राप्त करना, अच्छी प्राप्ति की अनुभूति करना। और दसवीं बात है, सदा पुरुषार्थ में तीव्रता मेंटेन करने के लिए ईश्वरीय नशा हमारा सदा बढ़ता रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। बाबा ने हम सभी बच्चों को पुरुषार्थ रूपी गाड़ी दी है, उस पुरुषार्थ रूपी गाड़ी को याद की यात्रा पर हमें दौड़ाते रहना है। उस प्रसाद रूपी गाड़ी का ईंधन क्या है, रूहानी नशा, ईश्वरीय नशा। अमृत वेले हमें रूहानी नशे से स्वयं को भरपूर करना है, ताकि सारे दिन भर में हमारे प्रसाद की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती रहे। हम देखते हैं एरोप्लेन एक घंटे में 800-900 किलोमीटर उड़ता है दूर। क्यों? क्योंकि इसका ईंधन पेट्रोल ही होता है, लेकिन एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहते हैं, एक्स्ट्रा अल्ट्रा रिफाइन वो होता है, इसलिए वो तेजी से दौड़ता है। हमारी प्रसाद में भी रूहानी नशा दिन प्रतिदिन रिफाइन होता जाए और बढ़ता भी जाए। रूहानी नशा कभी भी कम होने नहीं देना है, क्योंकि भगवान जो बागवान है वो ये बगीचा हर रोज ज्ञान और योग से जल से सींचता है। वो बागवान क्या चाहता है? मेरे बगीचे का हर एक रूहे गुलाब बहुत खिला हो, बहुत खिला हो, केवल खिला नहीं बहुत खिला हो। तो एक स्लोगन लिखो, बहुत अच्छा स्लोगन है, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। भगवान ने हमें ये चेहरा दिया है, चेहरा कितना भी सुंदर हो उस पर अगर मुस्कुराहट नहीं होती तो उसकी सुंदरता घटती है। तो इसलिए मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। सत्य ज्ञान के सागर बाबा हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए हमें सच्चा सुख मिल रहा है। लेकिन हमारे चेहरे से रूहानी मुस्कुराहट कभी भी गायब ना हो। चाहे कैसी भी बात आए, कितनी भी अपोजिशन आए, हमें अपनी मुस्कुराहट को, खुशी को मेंटेन करना है। बाबा क्या कहते हैं, शरीर भी चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी खुशी ना जाए, इतना महत्व बाबा खुशी को देते हैं। तो आत्मा जब खुशी में मस्त रहती है, रूहानी नशे में झूमती है, तो हमारे प्रसाद में सदा तीव्रता बरकरार रहती है। इसलिए मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनकर सदा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कई कहते हैं मेरे पास पेपर न आए मेरी परीक्षा न हो। भाई पेपर नहीं आएगा, परीक्षा नहीं आएगी तो निश्चय की परख कैसी होगी? कितनी मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ उसकी परख कैसी होगी? कोरोना काल में कई विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं ली, उनको ऐसा ही पास किया, अच्छे मार्क के साथ पास किया, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं रहा। क्योंकि जितनी कठिन परीक्षा या पेपर हम देते हैं, उतनी बड़ी प्राप्ति हमें होती है। IAS की हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, भाई पेपर भी तो टाइट होगा ना, पेपर भी तो बहुत बड़ा कठिन होगा ना, लेकिन उस कठिन पेपर को हमने सोचना नहीं है। भगवान मेरा साथी है, हर पल वो मुझे साथ देते हैं, उनके साथ से मुझे विजय मिलना निश्चित है, ऐसा आत्मविश्वास हमारे पर हो। आत्मविश्वास से बढ़कर इस दुनिया में कोई बढ़िया हथियार नहीं है, शस्त्र नहीं है। तो जितना निश्चय हमारा बढ़ता है, उतना हमारा आत्मा पर विश्वास बढ़ता है, और बहुत अच्छी हम उन्नति करते जाते हैं। इसलिए सदा स्वान में रहें, मैं कलप कलप की विजयी आत्मा हूँ। भगवान ने जन्मते ही विजय का तलक मुझे लिख दिया है। देखो हमें बहुत अच्छी पालना बाबा से मिलती है, हर रोज एक प्रयोग हमें करना है। अभी अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर मेरे सामने खड़े हैं, अमृत वेले अनुभव करना है। निराकार बाप मुझे निराकारी तिलक लगा रहे हैं, आत्म अभिमानी भाव का वरदान भी दे रहे हैं और उस पर विजय का तिलक भी वी शेप का लगा रहे हैं और विजयी भाव का वरदान भी दे रहे हैं। जाओ बच्चे सारे दिन भर में विजयी बन के रहो। और मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ, मुझ आत्मा को पवित्रता के सागर बाप पवित्रता का बहुत सुंदर ताज भी पहना रहे हैं। तो ऐसे डबल तिलक धारी और ताज धारी अमन अनुभव करते हैं तो कभी भी हमारा नशा कम नहीं हो सकता है। कितनी भी अपोजिशन आए हमने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना है। बाबा ने हमें समान के सिंहासन पर बैठने के लिए, पोजीशन में बैठने के लिए बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है, इसलिए हमें सदा अपनी मस्ती में मस्त रहना है। जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती, ये हिसाब है। जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती मेरा बाप है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। तो वो सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता है, इसलिए सदा रूहानी मस्ती में मस्त रहना है और भाग्य विधाता से खजाने लूटते रहना है। ओम शांति। अभी हम एक घंटा ऐसा पावरफुल अभ्यास करने जा रहे हैं, एकदम अपनी दुनिया में खो जाएंगे और वो सुंदर अनुभूतियां आप अपने साथ लेके जाएंगे। तो सभी जो भी सभा में बैठे हैं सभी खड़े हो जाएंगे।
बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो ने क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके, बैठ सामने दिल वाला।
प्रभु मिलन के मस्ती में चमक रहा हर चेहरा,
बैठेंगे। किसी को शरीर टच नहीं होना चाहिए। एक घंटा आपको बाबा की मस्ती में मस्त हो जाना है और एकदम साइलेंस में बैठना है। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी विधेही स्थिति की तपस्या में लीन हूं। मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु पवित्र स्वरूप हूँ। मस आत्मा रूपी तपस्वी से पवित्रता की तरंगे चारों ओर परम आनंद की अनुभूति हो रही है। देह रूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूं। मैं आत्मा रूपी मकान मालिक भगवान का बालक सो खजानों का मालिक हूं। इस देह रूपी मकान का मालिक और भगवान के खजानों का मालिक हूं। अधिकारी बच्चा हूं। संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। निश्चय का नशा मेरे चेहरे पर झलक रहा है। भगवान ने मुहस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा में विशेषता देखकर करोड़ों आत्माओं में से नई दुनिया की स्थापना के महान कार्य के लिए किया है। इस बेहद ड्रामा में मैं आत्मा हीरो पाटधारी हूं। ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। ड्रामा के डायरेक्टर हर रोज मुझे श्रीमत के रूप में डायरेक्शन देते रहते हैं। जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जा रहा है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भाग्य विधाता भगवान, हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थी बनकर भाग्य विधाता से खजाने लूट रहा हूं और लुटा रहा हूं। वारे में वाह मेरा भाग्य। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं इस फूल देह से न्यारी ज्योति बिंदु निराकारी आत्मा हूँ। यह देह तो मात्र मेरा साधन है, यह देह तो मात्र मेरा वस्त्र है, यह देह तो मात्र मेरा मकान है, इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व एक निराकार ज्योति बिंदु के रूप में ही है। निराकारी दुनिया से ही मैं निराकारी आत्मा, इस रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी, और निराकारी स्वरूप में ही निराकारी घर वापिस जाऊंगी। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, मस्तक मणि आत्मा से अष्ट शक्तियों की चमक, चारों ओर फैल रही है। मस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के चहु ओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है।
You see that.
मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, इस देह रूपी चैतन्य मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के गोले से पार बादलों से भी पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूँ। पवित्रता की चमक है, महर्ष निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह, मेरी हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे
बल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें मास परिस्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में लहरा रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों से स्नेह के मोती टपक रहे हैं। केला दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5,000 वर्षों बाद पाया है, इसलिए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब भी दिल करे इस फरिश्तों की दुनिया में आकर मेरे साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहो। तीव्र पुरुषार्थी बनकर स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, मेरी गोदी में खेलो। मेरा आज्ञाकारी फॉर फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार, मुझसे अनुभव करो। मेरे दिल तक तनसीन बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं निराकार भगवान साकार में आकर मुझे पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। वो हर रोज दूर देश से आकर मुरली के माध्यम से मधुर शिक्षाओं से मुझे सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भरपूर करते हैं। जिससे मेरी बुद्धि
हमारे
वैसी बनती जा रही है। मुझसे अपने टीचर पर नाज है, प्यारे बच्चे। कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरदानी हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो, वरदानी मूरत बनते रहो। मैंने दिए हुए महामंत्र मन मनाभाव का अज्ञापा जाप करते रहो। मेरे नैनों के नूर बच्चे कभी मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ बैठकर अपने दिल के समाचार की लेन देन करके स्वयं को एकदम हल्का, खुशी से भरपूर अनुभव करो। मेरे साथ खाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ चलो। मेरे साथ रास रचाओ, सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं। डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर बुद्धि कश्मीर भी पुष्पक विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। जगमगती हुई ज्योति उड़ती हुई जा रही हूं। दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा शांति धाम। मेरा स्वीट साइलेंस हो, मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे प्राण पिता सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल महस आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं निराकारी आत्मा अपने दिव्य नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। निहारती ही जा रही हूं बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा है बाबा ही बाबा मुझे नजर आ रहे हैं। बाबा बाबा मैं आत्मा दुख के सागर में गोती खा रही थी, चिल्ला रही थी और हे रेम के सागर बाबा आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपने दिल तक तपर। अपनी शीतल गोद में बिठा दिया बाबा, मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। जो उपकार आपने किया बाबा कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्योति बिंदु है लेकिन सात सिंधु, सात सागर उस बिंदु में समाये हुए हैं। वो ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। ज्ञान सूर्य से पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्मा बिंदु, ज्ञान सूर्य से पिता से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट अनुभव कर रही हूं। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है, सुख के सागर कंपेनियन के साथ मैं आत्मा बैठकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं ज्योति बिंदु आत्मा, महाज्योति बिंदु शिव पिता से महामिलन, मंगल मिलन का आनंद ले रहे हूं। बाबा मैंने आपसे बात कुछ पा लिया, बाबा अथाह शक्तियों के खजाने प्राप्त किए बाबा, लेकिन मेरी एक और छोटी सी आस है बाबा। कि मेरे दिल रूपी मंदिर में आपके ही प्यार की ज्योत अखंड जलती रहे बाबा, और मैं निश्चय बुद्धि आत्मा सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं बाबा। आपके संग में के ही रंग में रंगती रहूं बाबा। ज्ञान सूर्य सुपिता से शक्तियों की सकाश मौज आत्मा पर पड़ रही है और मेरे द्वारा शक्तियों की सकाश सारे विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही है। अनेक आत्माएं शक्तियों की सकाश अनुभव कर रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह विश्व कल्याणकारी स्थिति का इस नमः श्याम के समय। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापी वाया सूक्ष्मवतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हो और इस साकारी शरीर रूपी महल में मैं आत्मा राजा समान के सिंहासन पर बैठकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पर शासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मस शक्तिशाली आत्मा राजा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस विश्व में चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। इस देह रूपी चैतन्य डिब्बी में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रूपी चैतन्य हीरा बेदाग हीरा विराजमान हूं। मस आत्मा रूपी चैतन्य हीरे से अष्ट शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा इस बेहद के ड्रामा में हीरो पार्ट धारी हूं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं। निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु ओम शांति शांति शांति।
खुशियों का सब संसार मिलता